الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. حضرات اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کرم ہے کہ وہ ایمان کے جو اعمال ہیں اور جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی اچھی زندگی بن سکتی ہے اس کے مواقع اللہ تعالیٰ برابر عطا فرماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں خصوصیت رکھی ہے فطری ہے کہ وہ دیکھ کر سیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے. اگر اپنا آپ جائزہ لیں ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری ہر چیز ہے سیکھی ہوئی. ہم جو کچھ کرتے ہیں بولتے ہیں جس طرح بولتے ہیں جو ذوق ہمارا بنتا ہے کھانے پینے کا اور طبیعت کا جو انداز بنتا ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا اس سب ہم نے سیکھا. کیسے سیکھا ہے؟ مدرسے سے نہیں سیکھا، اسکول اور کالج سے نہیں سیکھا، بلکہ اپنے ماحول سے سیکھا ہے. شروع میں بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو جس طرح کرتے دیکھتا ہے، جس طرح ان کو ہنستے یا رنج کرتے یا فکر کرتے یا لباس وضع خطا اختیار کرتے اور معاملہ کرتے جس طرح دیکھتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے. جیسے بلاٹنگ پیپر ہوتا ہے، ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب شاید لوگ جانتے بھی نہ ہوں گے، کہ ایک کاغذ آتا تھا جس سے روشنائی جذب کر لیتے تھے، کیونکہ روشنائی اور قلم سے لکھتے تھے تو روشنائی دیر میں سوکھتی ہے، تو کپڑے میں لگ گئی، ہاتھ میں لگ گئی تو بلاٹنگ پیپر ہوتا تھا اس سے جذب کر لیتے تھے. تو انسان میں اللہ نے طبیعت بلاٹنگ پیپر کی جیسی رکھی ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے یا سنتا ہے اس سے سیکھ لیتا ہے، عرض کر لیتا ہے. کیا عرض کرتا ہے؟ ہر چیز نہیں عرض کرتا، وہ جو اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے وہ عرض کر لیتا ہے اور جو اس کو برا معلوم ہوتا ہے اس سے وہ اپنے کو بتاتا ہے اور اس کو نہیں اختیار کرتا. اس طرح انسان روز اول سے ایک طرح چلا آ رہا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان کچھ کے کچھ ہو گیا ہوتا، اگر بالکل دوسرے سیکھنے کا معاملہ نہ ہوتا، اپنی سوچ پر چلتا تو کچھ کے کچھ ہو جاتا. یہ انسان اس طرح کا نہ رہتا. اور لیکن سیکھنے کی وجہ سے یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان کا آپ حال دیکھیں گے تو آپ کے حال سے ملتا جلتا ہوگا، اس لیے کہ نسلن بعد نسل لوگ سیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. اس سے ہم اپنے کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید انتظام بھی کیا ہے. یوں سیکھنے میں تو یہ ہے کہ جیسا نظر آ گیا، جیسا دیکھ لیا، جیسا راستہ پڑا اس نے سیکھ لیا، برا ہو سیکھ لیا، خواہش کے بجائے خوبا سیکھ لیا، اچھی بری چیز اچھی لگی وہ سیکھ لیا، تو اس سے انسان بگڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ اچھی سی سیکھیں، بری چیز نہ سیکھیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی حکمت اللہ نے رکھی ہے کہ پانچ وقت کی نماز رکھی ہے. پانچ وقت کی نماز یہ کہ مسجد کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ پانچ وقت 24 گھنٹے پانچ مرتبہ وہ اکٹھا ہوں، ایک دوسرے کو دیکھیں کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کس طرح وضو کر رہا ہے، کس طرح باتیں کر رہا ہے، کیا اس کا انداز ہے، एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे देख रहे हैं और एक दूसरे सीख रहे हैं। ये इनसे सीख रहा है, वो उनसे कुछ चीज़ें इनसे सीख रहा है, वो कुछ उनसे। बार बार जब देखेगा किसी चीज को तो वो जज्ब कर लेगा। तो वो एक तरह का मिजाज, एक तरह का तरीका उनका बन जाएगा। फिर सुबह अल्लाह ने जुमे की नमाज रखी है, उसमें पूरे वो तो शहर के लोग और बस्ती के लोग सब इकट्ठा होंगे और सब एक दूसरे को देखेंगे किस तरह इबादत कर रहे हैं, किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, किस तरह दुआएं मांग रहे हैं, किस तरह अपनी बात अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और क्या उनकी कैफियत है। देखकर आदमी जज्बा पैदा होता है। देख रहा है कि एक शख्स दुआ मांग रहा है और रो रहा है तो क्या असर नहीं पड़ेगा, देखने वाला मुतासिर नहीं होगा बल्कि उसमें जज्बा पैदा होगा, बल्कि वो भी रोने लगेगा उसी तरह, वो सीख लेगा। इसी तरह देखा है किसी को बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहा है, सारे अरकान सही तौर पर अदा कर रहा है, देख के अच्छा मालूम होगा और आदमी के दिल में आएगा कि हम भी इस तरह की नमाज पढ़े। तो सीखने का अमल बड़े वही पैमाने पर चलता है और उसको अल्लाह ने खास इंतजाम भी कर दिया है कि करीब के लोग जो है दिन में 5 मरतबा इकट्ठा हो, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि सीख रहे हैं बल्कि एक दूसरे के हालात से वाकिफ हो रहे हैं। फला नमाज पढ़ने नहीं आया, क्या बात है, कुमार साहब बीमार है या सफर में चला गया है, वही वो तो बराबर आता है, जरा मालूम करो, देखो क्या है, मालूम हुआ बीमार है, बीमार है। अब हमदर्दी हुई, उसने कहा अच्छा आप कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या हम क्या आप क्या मदद कर सकते हैं, दवा ला दें कर दें, कितनी बड़ी बात हो गई। अगर वो एक दूसरे की फिक्र न होती तो कहे को पूछता। वो लोग अपने पड़े हैं, वो जो लोग ईमान नहीं रखते, जिनमें जो इस्लाम के दायरे में नहीं है, वो एक दूसरे से ताल्लुक ही नहीं रखते। वाकयात हो जाते हैं, आदमी अपने फ्लैट में खत्म हो जाता है, कई रोज के बाद लोगों को पता चलता है कि यहाँ तो जो आदमी था वो निकल नहीं रहा, क्या बात है, हम वो इंतकाल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। तो ईमान वालों की बात नहीं, ईमान वालों के लिए है कि एक दूसरे की फिक्र रखो, एक दूसरे के मुतालिक मालूम करो। बेचारा गमजदा है, देखा उसको नमाज आ रहा है लेकिन चुप चुप रहता है, अरे भैया क्या बात है, तुम बहुत चुप चुप हो, और क्या भाई ये फला मुसीबत आई है, अच्छा क्या है, उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, उसका तावन कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमारी सोसाइटी को, हमारी जमात को, ईमानी जमात को एक दूसरे से जोड़ दिया है और एक दूसरे का खादिम बना दिया है, एक दूसरे का अमीर बना दिया है, हमदर्द बना दिया है। कितना अच्छा माशरा हो जाएगा, आदमी बीमार हुआ तो 10 पूछने वाले आ रहे हैं, हमदर्दी करने वाले आ रहे हैं, उसको मशवरा देने वाले आ रहे हैं, उसका दिल बाग बाग हो जाएगा। और बीमार का मामला ये होता है कि उससे अगर हमदर्दी की जाए तो आधा मर्ज उसका उससे ख़त्म हो जाता है, आधा मर्ज ख़त्म हो जाता है। और उसके सामने अगर मायूसी की बात कही जाए तो मर्ज दुगना हो जाता है, यह बात। तो ये एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे का हाथ मालूम करने की बड़ी अहमियत है, लेकिन यूँ नहीं हो सकती। अगर जो अहले ईमान नहीं है उनके नहीं मिलेगी आपको, क्यों मिलेगी भाई, हमें क्या गलत पड़ी हम दूसरों की फिक्र करें, हमें तो अपना सब करना है, मिलने मुलाकात के का मौका नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान के रिश्ते से हमको मजबूर कर दिया है कि हम इकट्ठा हों 24 घंटे में 5 मरतबा इकट्ठा हों करीब के लोग, और फिर जुम्मे के दिन पूरे शहर के लोग, दूर दूर के लोग इकट्ठा हों। उसके बाद ईद है, ईद में शहर और शहर के बाहर के मुलाकात के सारा पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हों। उसके बाद बकरीद है, सारी दुनिया के मुसलमान हर तरफ से आकर इकट्ठा हों। तो कहीं का मुसलमान हो, किसी इलाके का हो, दूसरे इलाके के लोग उसको जान लेंगे, ये मालूम कर सकते हैं, ये नहीं मालूम कर सकते। लेकिन मक्के मुकर्रमा सब इकट्ठा हो रहे हैं, अमरीका का है, कनाडा का है, और हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और अरब है, अब एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी अच्छी चीजों को पसंद कर रहे हैं और उनकी जो बुरी चीजें हैं उस पर उनको मुतवज्जे कर रहे हैं कि भाई ये तुम क्या करते हो। तो कितना कितना मुश्तलक और कितना हमदर्द माहौल और माशरा बनता है। ये अल्लाह ने बड़ी हिकमत रखी है, ये इन इबादात के रास्ते से ये हिकमत रखी है। और उसके अलावा हुक्म दिया है, ताकीद भी की है और कहा है कि अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, जब भाई है तो भाई को भाई की फिक्र करनी चाहिए। और साफ तौर पर हुक्म आता है मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको उससे बेताल्लुक नहीं रहना चाहिए, उसे हमदर्दी करनी चाहिए। और मजीद ये कि यह हदीस शरीफ में आता है, कोई शख्स किसी मुसलमान से सिर्फ इस्लामी रिश्ते के मदद मिलने जाएगा तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा। अगर इस्लामी रिश्ते में मिलने जा रहा है, किसी गरज से नहीं जा रहा है, तो अल्लाह ताला क्या वो बाइस अजर है। इस तरह अल्लाह ताला ने एक दूसरे को जोड़ दिया है और इबादत के जरिए से जोड़ा है, दुनियावी मुनाफे के बुनियाद पर नहीं, दुनियावी मनफात अपने जिस्मानी राहत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमानी रिश्ते के बिना पर सबको जोड़ दिया है। और ये आपका रमजान, रमजान क्या है? रमजान भी मुश्तरक है दो बातों का, एक तो ये कि वो इबादत भी है, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बहाने और उस ताल्लुक का पूरा मुजाहरा करने का तरीका है कि आदमी इस एक महीने तक अपनी मर्जी के खिलाफ अपने अल्लाह के खातिर करता है, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी रजा हासिल करने के लिए एक महीने वो अपनी मर्जी को दबाता रहता है, अपनी मर्जी को दबाता रहता है। उसको अपने औकात पाबंद करने पड़ते हैं, अपनी मर्जी से औकात नहीं अख्तियार कर सकता, बल्कि जो औकात रमजान के लिहाज से, रोजे के लिहाज से औकात जो बढ़ते हैं वो पाबंद, रोजे का वक्त है उसको रोजे के लिए रुकना है कहीं और रोजा इफ्तार करना है, शहरी खानी है उसको उठकर और चाहे उसको और कोई काम हो लेकिन उस काम को छोड़ देगा करेगा। तो अल्लाह की मर्जी के लिए अपनी मर्जी को दबाने का एक महीने का ये एक गोया के एक प्रोग्राम है कि एक महीने तुम अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी दबाओ। जब अल्लाह की मर्जी के लिए हम अपनी मर्जी को दबाएंगे तो अल्लाह से अल्लाह की रजा हासिल होगी और हमें मशक भी होगी इस बात की कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हैं, अपनी मर्जी के हम मर्जी पर आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं जो चाहें करें, नहीं हमें तो वो हम पाबंद हैं वो करेंगे जो इसका इसकी इजाज़त हमको अल्लाह ने दी है। तो अपनी मर्जी को दबाने के लिए बाकायदा अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया और फिर उसके बाद एक चीज़ को दूसरी चीज़ अल्लाह ने जोड़ दिया। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये हुक्म है कि जो बेचारे परेशान हाल हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करो, इफ्तार कराओ। इफ्तार कराने का मतलब क्या है? खाना खिलाना। ये हम लोगों ने इफ्तार को खाने को अलग कर दिया है, इसका हुक्म जो है वो असल में खाना खिलाने का है। इफ्तार का मतलब यही है कि बेचारा खुद खाना, कितने गरीब है बेचारे उनको खाना नहीं मिल रहा है, अब आप जब इफ्तार कराएंगे तो उनको खाना मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उसने दो हिकमतें रख दी है, एक ये अपनी मर्जी का ताले बनाना, उसकी मश्क कराना, और दूसरे ये इसकी मश्क भी कराना कि हम दूसरे की हमदर्दी करें, दूसरे की परेशानी को दूर करें। सबसे बड़ी परेशानी इंसान की क्या है? खाने पीने की है। जो दौलतमंद मुल्क हैं वो अंदाजा नहीं कर सकते कि गरीब मुल्कों पर क्या मुसीबतें आती हैं। या हमारे अफ्रीका के आए बहुत ममालिक ऐसे हैं जहाँ फाके करते हैं लोग, शराफा को फाके करने पड़ते हैं और जरूरतें उनकी नहीं पूरी होती। और उसी में बात तो भूख 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 बर्दाश्त करते करते मर जाते हैं, سومال الیٹیریا اور یہ علاقوں کے لوگ آپ دیکھیے وہاں کے جو حالات آتے ہیں. ہم لوگ اپنے محلے کو اپنے 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 ملک کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سب لوگ اس طرح آرام سے ہوں گے. نہیں, دنیا میں غربت زیادہ ہے اور غریب لوگ زیادہ ہیں, پریشان لوگ زیادہ ہیں اور خوشحال لوگ تھوڑے ہیں. تو خوشحال لوگوں پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ غریب لوگوں کی وہی فکر کرے اور انسان انسان کا ہمدرد بنے, انسان 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 خودغرض بن کے نہ رہے بلکہ وہ ایک تو اپنے کو اپنے مالک سے جوڑے, اپنے مالک کے مرضی کے تابے بنے, اور دوسری یہ کہ اپنے بھائیوں کو یعنی دوسرے انسانوں کی بھی فکر کرے اور ان کی جو بنیادی تکلیف اسے دور کر دے. اور چیزیں تو آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن کھانا نہ ملے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہے, اور راحتیں جو ہیں اور جو آرام ہے وہ تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کھانا پانی نہ ملے یہ تو جان لینے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس کی اس ٹریننگ کے بھی کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم افطار کرائیں اور افطار کریں, اور دوسری بات یہ کہ یوں بھی ہمدردی کریں دوسروں کی اور جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ سلوک کر سکیں وہ کریں. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن جو رکھا ہے اس میں دونوں حکمتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ اس میں سارے مسلمان اکٹھا ہوں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے, اور دوسری یہ کہ وہ رمضان کو خیر عافیت سے گزارنے اور رمضان کو اس کا حقوق ادا کرنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتا اور افطار کرا کے افطار کر کے یہ مہینہ جب گزار لیا تو ایک بڑی کامیابی حاصل کی, امتحان پاس کیا, امتحان میں سے امتحان پاس کیا. امتحان کے پاس ہونے کی خوشی میں اللہ نے عید عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس میں تم خوشی کا اظہار کرو کہ تم نے اتنا بڑا مرحلہ طے کر دیا, تم نے اتنی بڑی مہم سر کی کہ مسلسل تم ایک مہینے اپنے کو پابند کرتے رہے اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنے کو چلاتے رہے اور دوسروں کی ہمدردی کرتے رہے اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی فکر کرتے رہے اور کامیابی کے ساتھ تم نے مہینہ پورا کر لیا. کتنی بڑی خوشی کی بات. تو ایک تو بات یہ کہ اللہ نے اس خوشی کے اظہار کے لیے عید کا دن رکھا اور اس میں نماز رکھی. نماز اگر نہ رکھی ہوتی تو لوگ اس طرح آپس میں ملتے نہیں. وہی جیسے ہم نے عرض کیا کہ نماز میں اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ پانچ وقت کی نماز تو قریب کے لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہے, اور جمعہ جو ہے اس سے بڑے دائرے میں ملنے کا, اور عید جو ہے اس سے بڑے دائرے میں ملنے کا, اور وہ بقرعید ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ملنے کا. یہ حکمت رکھی. اور دوسری یہ کہ عید کی جو عید کی رات ہے اس کے متعلق اس کو انعام کی رات قرار دیا گیا ہے, وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے, یعنی انعام کی رات, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی پر انعام دے گا کہ اے ہمارے بندو تم نے ہماری بات مانی, تکلیف اٹھائی ہمارے حکم کے مطابق, ہمدردی کی ایک دوسرے سے, اور زندگی کو تم نے ایمانی زندگی بنایا, ہم تم کو انعام دیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ جب انعام دینے پائے تو اس کے اختیار میں سارا, اس کی ملکیت میں سارا یہ عالم ہے, ساری زمین آسمان ہے, ہر چیز ہے, وہ انعام دے. اصل انعام وہ آخرت میں آخرت کے لحاظ سے دیتا ہے. یہ دنیا چھوٹی ہے, دنیا کی زندگی چھوٹی ہے, آخر کی زندگی بہت وسیع ہے, کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہوگی. وہ یہاں کی طرح نہیں ہے کہ 50, 60, 70, 80 سال میں آدمی کو دنیا چھوڑنا پڑتا ہے. وہاں آخرت میں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی ہوگی, اور وہاں آدمی کو جو ملے گا तो वो मूरी नदी के लिए लाखों साल की राहत मिलेगी। यहाँ तो अगर कोई चीज मिलती है तो अगर बहुत राहत आदमी को मिली वही 40-50 साल के बजाय उठा ले उसका खत्म, तो अल्लाह ताला जब इनाम देगा तो सोचे कितना बड़ा इनाम होगा। वो कह के दे रहा है कि हम इनाम देंगे, तुमने खैराफियत से तुमने हमारी मर्जी के मुताबिक महीना गुजारा तो हम तुमको इनाम देंगे। इसलिए उराद जायजा कहलाती है और उसमें हुक्म है कि उसमें हमको अल्लाह के दरबार में हाजिर होना चाहिए। अल्लाह के दरबार में कैसे हाजिर होता है? दुआओं के जरिए से, अल्लाह ताला के नमाज के जरिए से और दुआओं के जरिए से आदमी का रब्त अल्लाह ताला से होता है। अल्लाह ताला से रब्त का ताल्लुक नमाज के जरिए से और दुआ के जरिए से होता है। इसीलिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। मेराज किसे कहते हैं? मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलाया और जन्नत और अल्लाह को वहाँ आखिरत दिखा दी। आपको तकवीत की तकवीत के लिए तो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने नमाज लग दी है जो गोया के अल्लाह से आसमानों के गोया के आसमानों से जोड़ मिला दिया है। जो नमाज में जो दुआएं होती हैं, नमाज में जो तरीका है वो अल्लाह ताला से तकर्रुब वाला तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलाया आसमानों पर और करीब किया। नमाज में मोमिन अल्लाह से करीब होता है, तकर्रुब हासिल होता है। तो अल्लाह ताला तो लैलतुल जायजा में ईद की रात में मोमिन को ये चाहिए कि अल्लाह ताला से अपना रब कायम करे नमाज के लिए दुआ के जरिए से। इसलिए ईद की रात को भी लोग उलमा कहते हैं कि आदमी को इबादत करनी चाहिए, जैसे कि रमजान इबादत करता रहा है उस तरह ईद की रात में भी इसको इबादत करनी चाहिए। नहीं कि अब छुट्टी मिल गई, ईद का चांद निकला तो गया, हम आज़ाद हो गए, अब जो चाहे करें। ये सही नहीं है और ये अल्लाह को पसंद भी नहीं आएगा कि क्या हमने तुम्हें जेल में बंद किया था कि तुम निकल कर भाग रहे हो कि जेल से निकल आए? नहीं, हमें जेल में बंद नहीं किया गया था, हमको मौका दिया गया था कि हम अल्लाह ताला से अपना क़ुरूब बढ़ाएं और अल्लाह ताला से को हम की रजा के मुताबिक अपने को बनाएं। हमारे फायदे के लिए हमको ये महीने इस महीने की बात दी गई थी। तो भाइयों, ये आज के दिन जो है ये 29 आपके रमजान की 29 तारीख है, उनके न चांद हो जाए न हो तो भी एक दिन दो ये थोड़ा सा वक्त रह गया है। इसमें खास तौर पर अब हमको ईद की रात से फायदा उठाना चाहिए और रमजान के ख़त्म होने से पहले हमको दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला के सामने नमाज के जरिए हाजिर होकर अपने एहसास और जज्बात को, अपनी ज़रूरत को बयान करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए और इस बात पर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह ताला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई और रोज़े के साथ साथ रोज़े के जो पाबंदियाँ हैं और उसकी जो उसमें जो अच्छे काम बताए गए हैं वो भी अल्लाह ताला से करने की तौफीक अता फरमाई। जाहिर है कि किसी कम किसी ज़्यादा आदमी को समझना चाहिए कि हमसे पूरी तरह हम हाफ़ाज़ा नहीं कर सके। अल्लाह ताला के को राज़ी करने के जो हमको आदाब बताए गए, जो तरीक़ा बताया गया, उसको हम पूरी तरह नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा और उस पर आज हमको अदा फरमाएगा। और ये जो जायजा जो है ईद की रात, इसमें अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतर और बलंद से बलंद जो इनाम है वो अता फरमाएगा कि जिससे हम आखिरत में फ़ायदा उठाएंगे और दुनिया में भी हमें बरकत हासिल होगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन इतने दिनों की का जो काम किया है उसको एक ट्रेनिंग कहते थे। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आदमी को हिम्मत कराई जाए काम की, तो हमको हमारी मशक कराई गई है कि हम किस तरह अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें, किस तरह हम अल्लाह को राजी करने के लिए आवाज इख्तियार करें, वो ट्रेनिंग से हमको फायदा उठाना है। और ईद के रमजान के बाद भी अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी को बनाने की कोशिश करना है, और अल्लाह के नेक बंदे की हैसियत से हमें अपनी जिंदगी को संवारना और बनाना है, और इसका जायजा लेना है कि हमें हमारी जिंदगी में क्या क्या खराबियां आ गई हैं जिससे अल्लाह की रहमत दूर होती है, कौन कौन सी बातें ऐसी आ गई हैं जिससे अल्लाह की नाराजगी होती है, उन चीज़ों को हमें दूर करना है। वरना एक महीने मेहनत की, उसके बाद ऐसा तरीका अख्तियार किया कि सारी मेहनत रायगा चली जाए। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो जानता है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम पाबंदी रखोगे या नहीं रखोगे, अल्लाह को पहले से मालूम है। तो फिर अल्लाह ताला जो इनाम देगा ईद की रात को, वो उसी हिसाब से कम बेश होगा। तो हमको आइंदा के लिए भी तय करना है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के रजा के मुताबिक हो, और जो बातें हमारी ज़िंदगी में गलत दाखिल हो गई हैं, जो आदतें हमारी बुरी हो गई हैं जिससे अल्लाह की नाराज़ी होती है, अब हमें उनसे बचना है। और हमें रमज़ान से ये सबक लेना चाहिए कि हमने इतने दिनों में जब अल्लाह ताला की खातिर तकलीफ उठाई है, तो अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बनाना है कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर हम अपनी मर्जी को दबाया करेंगे, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो ज़रूरी है उसको हम इख्तियार करेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम कामयाब हैं, और कामयाबी मोमिन की असल कामयाबी वो है कि जिसमें उसको उसकी आखरत में उसको अल्लाह ताला इनामात से और राहतों से उसको शाद काम करे। तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे ये टूटे फूटे रोजे, टूटी फूटी नमाजें जो हम पूरी तरह सही तौर पर शायद अदा न कर सके हों, उसको माफ़ फरमाए, और हमको उन बंदों में शुमार फरमाए कि जिन्होंने अल्लाह की मर्जी को बताई और जिंदगी को ढालने की कोशिश की है। वाखर दावना जिंदा रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزي الدنيا و عذاب الاخره। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزي الدنيا و عذاب الاخره। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره। اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من رذلك والنار। اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من رذلك والنار। اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا। ربنا وفقنا لما تحب وترضى والى الاخره لنا خيرا من الاولى। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। اغفر لنا हमारी कोताहियों को, हमारी गलतकारियों को माफ़ फरमा, और हमको इस महीने की जो बरकत हैं वो हमको अपने महल अपने फर्ज़ कर्म से अता फरमा। हम इस लायक तो नहीं हैं, हमारी इबादतें हमारी नमाजें तो इसे लायक नहीं हैं कि वो उसके हक अदा हुआ हो, लेकिन आप करम और आपकी रहमत बहुत वसी है। टूटी फूटी नमाजें और टूटे फूटे अमाल ही को परवरदिगार सही अमाल के तौर पर कबूल फरमा, और हमको ये नेमत और करम जो तरह रोजेदारों के साथ जिसका वादा है, और अल्लाह तो रोजेदार हमको अता फरमा, और हमारी जिंदगियों को ऐसी तब्दीली पैदा फरमा कि हम तेरी रजा के मुताबिक काम कर सकते करें, और आखिरत में कामयाबी और सरखरूई के लिए जो तरीका है उसको हम अख्तियार करें। रोजगार हमारे जो हमारे अयूब हैं और हमारी जो खताएं हैं उनको दूर करने के हमको तौफीक अदा करना और सहूलत अदा करना। रोजगार और ये रोजों की जो बरकत थी वो रमजान के साथ तो खत्म हो गई, लेकिन उनके असरात तो बाकी रह सकते हैं। रोजगार उनके असरात को हमारे लिए बाकी रख और हमको ऐसे मौके जिससे तेरी रजा हासिल होती हो और जिससे हमारी जिंदगी संवरती हो, बेहतर बनती हो और आखिर में कामयाबी उससे हासिल होती हो, हमें उसकी तौफीक अदा फरमा और उनको अता फरमा। रोजगार हमारी दुआओं को अपने फर्ज कर कबूल फरमा। हुसैन अल्लाह हमारा